नासूर। लीजिए सुनिए ये नाटक, लेखक एवं निर्देशक संदीप दुबे।
इतनी रात को फोन, आखिर कौन हो सकता है? हेलो
भाभी, भाभी मैं हूँ सावित्री, दिल्ली से बोल रही हूँ। भाभी आपकी छोटी ननद। कैसी हो भाभी, तबीयत तो ठीक है ना?
सावित्री इतनी रात फोन कैसे किया? अरे घर पर सब ठीक तो है ना?
भाभी भाभी बात यह है कि अंजलि बहू की तबीयत खराब है, रवि उसे लेकर दिल्ली आया हुआ है, उसे जानकी दास अस्पताल में भर्ती करा गया है।
क्या, कब? बहू की तबीयत इतनी खराब हो गई कि रवि उसे केन्या से दिल्ली ले आया और मुझे खबर तक नहीं।
भाभी भाभी बुरा मत मानना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए रवि ने तुम्हें बताने को मना किया था, लेकिन क्या करूं, मेरा मन नहीं माना इसलिए तुम्हें फोन किया है। रवि और अंजलि को आए आज चौथा दिन है, अंजलि की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है भाभी। रवि बहुत बहुत परेशान है भाभी।
क्या कह रही हो सावित्री, उन्हें आए चार दिन हो गए और तुम मुझे अब बता रही हो? अंजलि को क्या हुआ है और रवि कैसी मुसीबत में है? आधी रात को पहेलिया मत बुझाओ सावित्री, बताओ, स्पष्ट बोलो क्या बात है।
भाभी भाभी बात यह है कि केन्या में अंजलि ने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया।
क्या,
वैसे जहर का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर ने इंटरनेट से उस जहर के असर का पता किया है। उसका असर खाने के 7-8 दिन बाद से शुरू होता है और धीरे धीरे वो शरीर के सारे अंगों में फैलना शुरू हो जाता है।
केन्या में उसे नहीं दिखाया, शायद पेट साफ कराने से कोई फायदा होता।
वहाँ के डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए भाभी, अंजलि ने वहाँ लिखित बयान में पुलिस को लिख कर दिया है कि वो जहर उसने गलती से पी लिया था, इसी आधार पर रवि उसे दिल्ली ले आया है।
लेकिन लेकिन आप तो जानती है कि हमारे यहाँ कोई भी बात आसानी से नहीं मानेगा।
अंजलि की खाने की नली बुरी तरह जल चुकी है भाभी, उसकी आवाज भी बंद हो चुकी है, दोनों किडनियों पर असर हो चुका है भाभी, उसे डायलिसिस पर रखा जा रहा है, उसकी हालत देखी नहीं जाती भाभी। रवि ने पानी की तरह पैसा बहा दिया है, उसके सारे रुपए खत्म हो गए भाभी। भाभी आप ऐसा करिए, 2 लाख का इंतजाम करके कल ही दिल्ली आ जाइए।
इतने रुपए का इंतजाम करने में मुझे समय लगेगा, तब तक जो खर्चा है तुम दे देना, मैं रुपए का इंतजाम होते ही आने की कोशिश करूंगी।
भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं सब कर दूंगी, आप तो बस आ जाना, क्योंकि अंजलि का जी पाना मुश्किल है भाभी, पुलिस वाले रोड़े जरूर अटकाएंगे, सब जगह पैसा खिलाना पड़ेगा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ।
मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब क्या मैं ऐसे ही मुंह दिखाकर जीऊंगी? रवि को मैंने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया, मैं पहले ही उसके लिए ऐसी लड़की चाहती थी जो उसकी भावनाओं को समझे और आपस में सामंजस्य बनाकर चले।
मालती, मालती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा। शादी से पहले तो बच्चे ना समझी करते ही हैं, इसको गंभीरता से मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
हर कोई मुझ पर व्यंग करता है, रवि अंजलि की लव मैरिज के कारण मेरा घर से निकलना दूभर हो गया था और अब ये कलंक।
तुम दुखी क्यों होती हो? रवि ने अंजलि का चुनाव खुद किया है, याद है एक बार रवि के जन्मदिन पर उसके कुछ मित्र आए थे, जिनमें एक युवती अंजलि भी थी। रवि व अंजलि की आपसी चाहत हमसे छिप न सकी थी। बहुत कुरीदने पर रवि ने बताया था कि अंजलि तलाकशुदा है और तुम्हें।
मुझे गहरा धक्का लगा था, लेकिन फिर भी ये सोचकर कि तलाकशुदा लड़की रवि की भावनाओं को ज्यादा अच्छी तरह समझेगी, उनके विवाह को स्वीकृति दे दी थी हमने।
हाँ मालती, मुझे सब कुछ याद है। क्या बात है, रो क्यों रही हो मालती?
एक दिन मैंने सुना कि रवि और अंजलि मुझे लेकर कुछ बहस कर रहे हैं।
अंजलि, कभी कभी तुम्हें माँ की मदद भी करनी चाहिए। अरे हर काम माँ अपने हाथ से ही तो करती हैं, और फिर उनकी ये उम्र है क्या?
मैं नौकरी के साथ साथ घर का काम नहीं कर सकती। माँ से नहीं होता तो किसने काम ने करने से? नौकर रख ले, क्योंकि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती।
अंजलि, माँ इस उम्र में दिन रात काम करती हैं, मेरी शादी से उन्हें क्या फायदा हुआ? उन्हें कभी तो आराम मिलना चाहिए ना।
मुझसे शादी क्या अपनी माँ की चाकरी कराने के लिए की थी? अरे मैंने तो पहले ही तलाक इसलिए लिया था क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती।
अंजलि, हमारा कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है, सिर्फ माँ ही तो है। और
जब तक तुम्हारी प्यारी बहन व जीजाजी टपक पड़ते हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? छुट्टी का दिन भी खराब हो जाता है।
शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? उन्हीं के समझाने पर मैंने तुमसे विवाह किया था, पता है तुमको?
तो ऐसा कौन सा मुझ पर एहसान किया था?
एहसान ही किया था तुम जैसी तलाकशुदा को घर में लाने के लिए।
रवि, तुम्हें शर्म नहीं आती बहू से इस तरीके की बातें करते हुए?
माँ,
आप हमारे बीच में मत बोलिए। माँ जी, आपकी ही वजह से हो रहा है ये सब। अब अगर रवि ने अलग घर नहीं लिया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी।
बहू, बहू क्या क्या कर रही हो? माचिस क्यों जला रही हो? रवि, रवि अंजलि की साड़ी ने आग पकड़ ली है। रवि बुझाओ उसे।
और अंजलि अपनी हर नाजायज मांग को पूरा करने के लिए रवि को आत्महत्या कर लेने की धमकी देने लगी।
हाँ राजीव, और अंजलि के दबाव से तंग आकर रवि ने केनिया जाने का फैसला कर लिया, और उस दिन से मैं यहाँ इस सुनसान घर में तुम्हारी यादों के सहारे एक एक दिन काट रही हूँ। तुम्हारी यादें मुझे प्रेरणा देती हैं, वही मेरा संबल है।
माँ,
बेटा, रवि ये क्या हालत बना रखी है, एकदम हड्डियों का ढांचा।
माँ, माँ देखो तो, अंजलि ने बेवकूफी की वजह से अपनी क्या हालत बना रखी है। अनजाने में ही अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया उसने।
अरे तेरी भी हालत कौन सी अच्छी है रवि बेटा, क्या हो गया है तुझे?
अंजलि की हालत बहुत खराब हो चुकी है माँ।
पर ये सब हुआ कैसे रवि?
माँ, उस दिन जन्मदिन की पार्टी थी। सोनल का यह पांचवां जन्मदिन था। काफी लोग आए थे। जब केक कटा तो सोनल ने केक का पहला टुकड़ा अंजलि के मुंह में न डालकर मेरे मुंह में डाल दिया। मेहमानों में से किसी ने यह कह दिया कि बिटिया पापा को ज्यादा प्यार करती है। फिर क्या माँ, अंजलि सोनल को सभी के सामने घसीटते हुए अंदर के कमरे में ले गई। उसे थप्पड़ मारकर पूछने लगी कि बता, तुझे यह सब कहने के लिए पापा ने सिखाया है ना?
फिर क्या हुआ रवि बेटा?
फिर मैं अंदर पहुंचा तो जाने कहां से एक शीशी उठाकर मुझे दिखाने लगी कि तुमने मेहमानों के सामने मेरी ही बच्ची से मेरी बेइज्जती कराई।
क्या
तुम सबको जताना चाहते हो कि मुझसे ज्यादा तुम मेरी बच्ची से प्यार करते हो? ये कहती थी वो।
तूने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? छोटी सी बच्ची की बात को बेवजह इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए था बेटा।
माँ, मेरे रोकते रोकते उसने जहर की शीशी मुंह से लगा ली। कई लोग कमरे में आ चुके थे, उसे अस्पताल ले गए, लेकिन पहुंचते पहुंचते 2 घंटे बीत गए थे। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि जहर बहुत ही खतरनाक था। 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मौत का डर अंजलि के मुंह पर भी मडराने लगा था। मां, उसने मेरे पक्ष में बयान इसलिए दिया कि हिंदुस्तान लाकर मैं उसे बचा लूंगा। मैंने पूरी कोशिश की मां, लेकिन अंजलि अब नहीं बचेगी।
क्या? रवि, अंजलि कहां है? कहां है वो? मुझे अंदर ले चलो।
अंजलि,
अंजलि बेटा,
देखो माँ आई है।
माँ, मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ, मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा? मुझे माफ कर दो। मैंने रवि जैसे सीधे साधे इंसान की जिंदगी में जहर घोल दिया। माँ, भला इसमें उसका क्या कसूर था? लेकिन जब मैंने अपनी बेटी का प्यार बढ़ते देखा तो मुझसे नहीं रहा गया।
बहू, बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं भी एक औरत हूँ। रवि के पिताजी गए हुए 2 साल बीत गए हैं। सब सहन किया है और करूंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। हमारे समाज की सोच ही कुछ ऐसी है कि अपनी कुटिल प्रवृत्ति, जिद और प्रतिशोध से भरी औरत भी अगर आत्महत्या कर लेती है ना, तो वो सबकी नजर में बेचारी और अबला कहलाएगी, और उसका पति निर्दोष और सही होकर भी दुष्ट और हत्यारा।
नहीं, नहीं, रवि निर्दोष है। मैंने रवि के पक्ष में बयान दिए हैं। मुझे मालूम है माँ जी, मुझे मालूम है कि मेरे द्वारा दिए गए घावों से चल नहीं रवि अब कभी भी आसानी से सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा।
बहू, बहू, ये समाज या रिश्तेदार क्या उसे चैन से जीने देंगे? शरीर के घाव तो दवा और मरहम से भर जाते हैं, लेकिन
माँ, माँ सच कहती है अंजलि, मन पर लगे गहरे घाव कभी नहीं भर पाएंगे, शायद कभी नहीं। वे तो रिश्ते रहेंगे सदा नासूर बनकर।
रवि?
हाँ माँ।
रवि, अंजलि कुछ बोलती क्यों नहीं? अंजलि, अंजलि,
माँ, अंजलि अब कभी नहीं बोलेगी, ना कड़वा और ना मीठा। अपने हक के लिए लड़ते लड़ते उसने मौत को स्वीकारना उचित समझा, चाहे वह हक पति के प्यार का हो या बेटी की चाहत का। वह चाहती थी मां कि जिसे वह अपना कहती है उस पर किसी और का अधिकार ना हो।
बेटा।
हाँ मां।
मन भारी ना करो, सोनल को प्यार दो और पाल पोस कर बड़ा करो, ताकि अंजलि की आत्मा को भी चैन मिले।
हाँ माँ। नासूर, अभी आपने ये नाटक सुना। भाग लेने वाले कलाकार थे संदीप दुबे, अंतरा करवड़े एवं पूजा केलकर।